वैदेही अपने केबिन में बैठकर किसी केस की स्टडी कर रही थी। सर्फिंग करते टाइम उसने एक न्यूज़ देखी और उसे देखकर वो इमोशनल हो गई। उस खबर ने उसके मन में अपनी पुरानी और कड़वी यादों को ताज़ा कर दिया था। मोबाइल की घंटी बजने से वैदेही का ध्यान टूटा। उसने देखा कि उस पर यशवर्धन सिंह का कॉल आ रहा था। एक घंटे बाद यशवर्धन सिंह की मीटिंग शुरू होने वाली है, शायद इसीलिए वो कॉल कर रहा होगा। इसे इग्नोर करना ही सही होगा। ऐसा करती हूँ, फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ। वैदेही ने कॉल नहीं उठाया और काम में डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए अपना फ़ोन साइलेंट करके वापस अपने काम में लग गई। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे, कब इन्हें एहसास होगा कि औरतों का भी अपना एक अस्तित्व होता है, उन्हें भी अपने हिसाब से जीने का हक होता है। लेकिन नहीं, पता नहीं किस बेवकूफ़ इंसान ने ये रूल्स बनाए होंगे, जहां एक लड़की को पहले अपने माँ बाप के हिसाब से चलना पड़ता है तो फिर अपने पति के, अगर उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर अपने बच्चों की सुनो, मानो उनकी तो कोई लाइफ ही ना हो। वैदेही की बातों से उसका दर्द छलक रहा था। वैदेही ने अपना काम जारी रखा। काम के चलते उसने यशवर्धन सिंह की मीटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फोन साइलेंट होने की वजह से उसे पता नहीं चला, लेकिन उसके मोबाइल पर यशवर्धन सिंह के काफी फोन कॉल्स आ चुके थे। यशवर्धन सिंह के पार्टी ऑफिस में उनकी मीटिंग चल रही थी, जहां पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष श्री रामचरण जी त्यागी सबको संबोधित कर रहे थे। रामचरण जी उम्र और अनुभव दोनों ही लिहाज से काफी बड़े थे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि एक हफ्ते बाद नतीजे आने वाले हैं, हवा हर बार की तरह हमारी ओर ही बह रही है। ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि हम मुख्यमंत्री पद के लिए किसे दावेदार बनाएं। जैसे ही रामचरण जी ने अपनी बात खत्म की, सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यशवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मानो उसे पहले से पता हो कि सब उसी का समर्थन करने वाले हैं। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। उसके समर्थन में एक नेता ने कहा, इसमें सोचना क्या है त्यागी जी, हमारी पार्टी हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करती आ रही है। यशवर्धन के पिताजी हर्षवर्धन जी अगर जिंदा होते तो आज ये पोजीशन उनकी थी। दुर्भाग्यवश अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो स्थिति में हर्षवर्धन जी के बजाय उनके बेटे यशवर्धन को ये मौका दिया जाए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन तभी किसी दूसरे नेता ने उनकी बात का विरोध करते हुए कहा, हर्षवर्धन जी के जाने का दुख हमें भी है, लेकिन हर्षवर्धन जी के बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह की बारी थी। अब हर्षवर्धन जी नहीं रहे तो राघवेंद्र प्रताप इस पद के दावेदार बनने चाहिए। यश की उम्र अभी काफी कम है, लेकिन राघव उससे कहीं ज्यादा परिपक्व है और इस पद के लिए उत्तम चुनाव होगा। जहां कुछ लोग यशवर्धन का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं इस नेता के साथ कुछ लोग राघवेंद्र प्रताप सिंह का समर्थन कर रहे थे। वहां हॉल में उन लोगों के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम आने से यशवर्धन के चेहरे पर चिंता के भाव थे। शांत हो जाइए, त्यागी जी ने उन सबको चुप करवाते हुए आगे बोले, आज से पहले कभी पार्टी में इस तरह से मतभेद नहीं हुआ, हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसा ना हो। नहीं होगा त्यागी जी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आपको एक अंतिम निर्णय लेना होगा। भीड़ में से एक औरत की आवाज आई। मैं भी आपके विचार से सहमत हूं सर, यशवर्धन बीच में बोला, मुझे आपका निर्णय मंजूर होगा, लेकिन ये लोग जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो इस मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं है। यशवर्धन सिंह की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीटिंग में राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद नहीं था, इस बात का फायदा उसे बखूबी मिल रहा था। अरे जाएंगे कहां, कर रहे होंगे अपने ही इलाके में किसी के ऊपर दादागिरी, अब उनके बारे में किसी से कुछ छुपा थोड़ी है, किसी दूसरे नेता ने कहा जो कि यशवर्धन को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ हम एक दूसरे के चरित्र के पर उंगली उठाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। मत भूलिए कि हमारी पार्टी की पोजीशन को स्ट्रांग करने में राघव का बहुत बड़ा हाथ है। त्यागी जी ने उन सबको चुप करवाया, लेकिन भीड़ में फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। हाँ, सिर्फ हाथ ही नहीं, पैर, लात, खूंसे, कट्टे, बंदूकें और न जाने क्या क्या है। पार्टी मीटिंग में गहमा गहमी का माहौल हो चुका था, जहां त्यागी जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार किसे बनाए। राघवेंद्र प्रताप और यशवर्धन दोनों ही उसके दाएं और बाएं हाथ की तरह थे, जिनमें से किसी एक को चुनना नामुमकिन था। क्यों ना हम इन दोनों को ही दावेदार बनाए, जो भी MLA इन्हें सपोर्ट करेगा वो अपने हिसाब से वोटिंग कर देगा और इस तरह CM चुन लिया जाएगा, वहां मौजूद एक औरत ने सुझाव दिया। आपका सुझाव काफी अच्छा है माया जी, लेकिन अगर मीडिया को इस बात की भनक भी लगी तो ये हमारी पार्टी की इमेज को काफी खराब करेगा। अब तक पार्टी में कितनी भी तनातनी रही हो, लेकिन बाहर सभी को ये पता है कि सभी सद्भावना से एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दो दावेदारों को खड़ा किया तो लोगों तक ये खबर पहुंच ही जाएगी कि हमारे बीच आपसी मतभेद है। त्यागी जी ने उनके सुझाव को खारिज कर दिया। पार्टी में सब लोग अपनी तरफ से अलग अलग सुझाव दे रहे थे, वहीं इन सबके बीच यशवर्धन किन्हीं और ही ख्यालों में गुम था। तो आप यहाँ नहीं आई मिस रघुवंशी, सुना है आप सच और न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हम यहाँ किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आज आप इस मीटिंग में मौजूद होती तो आप राघवेंद्र प्रताप सिंह की सच्चाई पता चल जाती और आपके जरिए दुनिया को भी। भले ही हम मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इस पद पर आए। काफी बहसबाजी के बाद मीटिंग खत्म होने पर आ गई। इतनी बहसबाजी के बावजूद मीटिंग का कोई सार नहीं निकला। मीटिंग को खत्म करते हुए त्यागी जी बोले, ये तो तय है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार में से यशवर्धन और राघवेंद्र प्रताप में से किसी एक को खड़ा किया जाएगा। अगर ये दोनों आपस में सुलह कर किसी एक को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, वरना अंतिम निर्णय लेते हुए हम दोनों को ही इस पद के दावेदार के रूप में खड़ा करेंगे। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। वहां मौजूद नेताओं में से कुछ ने उनकी बात पर सहमति जताई, जबकि कुछ को ये सुझाव पसंद नहीं आया। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई चुनाव के नतीजे आने के इंतजार में थे। मीटिंग खत्म होते होते रात के 11 बज चुके थे। सभी वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल चुके थे। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद वैदेही ने नाइट शिफ्ट में भी काम करने का डिसाइड किया। उसके साथ उसका असिस्टेंट देव भी मौजूद था, जो कि एक इंटर्न भी था। ये महाराष्ट्र का ही कोई रिमोट एरिया है, केस स्टडी करते हुए देव ने बताया। जरा देखना ये इलाका किसके अंडर आ रहा है, होना हो पुलिस को दबाने का काम वहीं के किसी नेता या एमएलए का होगा। वैदेही के कहने पर देव ने उस एरिया के बारे में अपने लैपटॉप पर सर्च करना शुरू किया। उसने लैपटॉप की स्क्रीन में पढ़ते हुए बोला, कोई महेश चंद्र माम का व्यक्ति है। वैसे तो इसकी खुद की कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन हमारे एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह का रिश्तेदार है। लगता है उसी के दम पर उसने ये इलेक्शन जीता होगा। जरा राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में तो सर्च करना, सुना तो काफी है लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की इसके बारे में। वैदेही के कहने पर देव ने लैपटॉप पर राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में पता लगाना शुरू किया। वैदेही की नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी। उसने राघवेंद्र की तस्वीर देखकर कहा, ये क्या किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो माथे पर टीका लगा रखा है और कुर्ता पजामा, दाढ़ी मूछ? हाँ, रॉयल फैमिली तो नहीं, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं है। इसके दादा परदादा के टाइम से ही इनके पास काफी जमीन थी, तो ये बरसों से जमींदारी का काम करते आ रहे हैं। इन सबसे काफी पैसा बनाया है इन्होंने। हाँ, भगवान ने जैसे जमींदारों को किसानों का खून चूसने के लिए ही बनाया था।
राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। आप जानती है ना कि वो महाराष्ट्र विकास पार्टी से बिलोंग करता है, और उसकी इमेज ज्यादा नहीं कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ऐसे में कुछ हुआ भी होगा तो वो हटवा दिया होगा, देव ने कहा। भले ही महाराष्ट्र विकास पार्टी ने हटवा दिया होगा, लेकिन सच कभी बदल नहीं सकता, और हम उसके बारे में पता लगा कर रहेंगे। चलो, इन सब के बारे में कल काम करेंगे, अभी काफी लेट हो गया है। प्रतीक सर को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। इससे पहले कि वो हम दोनों को नौकरी से निकाले, हमें यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, वैदेही ने हल्के मजाकिया तरीके में कहा। देव ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद चले जाऊँगा। अब क्या तुम मेरे असिस्टेंट के साथ साथ बॉडीगार्ड भी बनोगे? अगर तुम मुझे छोड़कर अपने घर जाओगे तो काफी देर हो जाएगी, लेकिन प्रतीक सर का ऑर्डर है कि आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। अब चलिए, अगर हमने बहस करने में टाइम लगाया तो और भी देर हो जाएगी, बोलते हुए देव ने कार की चाबी उठाई। वैदेही ने भी आगे ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा। उन्हें काम करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे, और जिस तरह का उनका काम था उस वजह से उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन गए थे। वैदेही देव के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर जा रही थी। लेट होने की वजह से उन्होंने जंगल के रास्ते शॉर्टकट लिया और एक सुनसान रास्ते में अपनी गाड़ी दौड़ा ली। वो दोनों थोड़ी दूर आगे पहुंचे ही थे कि रास्ते में उन्हें गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी।